我们的事业是正义的，正义的事业是任何敌人也干不破的。
ये आवाज है चीन के सर्वोत्कृष्ट नेता माओ से तुंग की। 40 के दशक में माओ का चीन में वही स्थान था जो भारत में गांधी का हुआ करता था। बल्कि अगर ये कहा जाए कि अपनी जिंदगी के आखिरी क्षणों तक माओ की ये इज्जत चीनी लोगों के बीच बनी रही तो गलत नहीं होगा। भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह 50 के दशक में बीजिंग में भारतीय दूतावास में एक कनिष्ठ अधिकारी हुआ करते थे। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने चीन की यात्रा की थी और माओ से उनकी मुलाकात के समय नटवर सिंह भी मौजूद थे।
माओ से काफी बातचीत हुई इनकी, मैं भी था वहाँ, मैंने फोटो ली थी राधाकृष्णन की और माओ से तुम की। ही लुक्ड वेरी इम्प्रेसिव। वो सबसे मुझे याद है कि जब वो मुझसे माओ से मिले तो उन्होंने माओ के गाल पर हाथ रख दिया, सब चौंक गए। तो राधाकृष्णन ने कहा कि मिस्टर चेयरमैन डोंट बी अलार्म्ड, मैंने ये पोप को भी किया है और स्टालिन को भी किया है, टेंशन एकदम कम हो गई।
आपने जिक्र किया है कि बैंकवेट के दौरान उन्होंने अपनी चॉपस्टिक से कुछ उठाकर उनकी प्लेट में रखा।
हाँ, ये तो बहुत है कि चाइना में तो सबसे बड़ी बात यही है कि भाई हम वी ईट द सेम ब्रेड। तो राधा कृष्णन ने कोई बहुत दुनिया में रह चुके थे, इंग्लैंड में बहुत रहे थे, तो उन्होंने कोई इस सफाई से उसको हैंडल किया कि काबिल तारीफ।
इस मुलाकात के दौरान राधा कृष्णन की उंगली में चोट लगी हुई थी। हुआ ये था कि चीन की यात्रा से पहले कंबोडिया के दौरे के दौरान उनके ADC की गलती की वजह से उनका हाथ कार के दरवाजे के बीच आ गया था और उनकी उंगली की हड्डी टूट गई थी। माओ ने इसे देखते ही तुरंत अपना डॉक्टर बुलवाया और नए सिरे से उनकी मलहम पट्टी करवाई। इस यात्रा से एक साल पहले चीन में भारत के शार्डी अफेयर्स रहे लखन मेहरोत्रा एक सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बनकर चीन के राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने बीजिंग गए थे। तब अचानक बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के माओ ने उन्हें बीच परेड में से अपने पास बुला लिया था।
जब परेड हो रही थी 1 अक्टूबर को पीकिंग में, तो हम लोगों को विशेष रूप से उस परेड से बाहर कर लिया गया और कहा गया कि आप ऊपर हमारे नेताओं से मिलने जाएंगे। उन नेताओं में तो सबसे पहले माओ ज़ेदुंग थे और माओ ज़ेदुंग ने बड़ा हंस के हम लोगों का स्वागत किया और हम में से हर एक से हाथ मिलाया और कहा कि हम भारतवर्ष के साथ अटूट संबंध रखना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि आप सब लोग यहाँ आए हुए हैं और आपकी यात्रा सुखद होगी। उन्होंने ये भी कहा कि आपके जो इतने भी नेतागण हैं उनको हमारी शुभकामनाएं, आप लौट के जा कर के दीजिएगा।
किस तरह से दिखते थे माओ? आपने तो एक गज की दूरी से उन्हें देखा, जरा डिस्क्राइब करें।
नहीं, एक गज नहीं साहब, हाथ मिलाया उनसे तो करीब करीब गले गले मिलते हुए। लंबे थे, चेहरा उनका बिल्कुल गोल चांद जैसा, खोपड़ी में थोड़े बाल, थोड़े आगे से खाली बिल्कुल, और जिसको माओ शर्ट कहते हैं लेकिन वो असल में सोवियत शर्ट है जो वो पहनते थे विद फ्लैप पॉकेट्स एंड सो ऑन, वो बड़ी ढीली सी उनकी रहती थी। मतलब इवन ऑन 1 अक्टूबर ही वॉज नॉट ड्रेस्ड लाइक ए मिलिट्री मैन, आई मीन इट वॉज क्वाइट ए लूज शर्ट, बोथ ग्रे इन कलर बट विद अ वेरी बिग स्माइल ऑन हिज फेस। जो उनके दूसरे साथी थे पोलिट ब्यूरो के, जो कि उनके साथ थे ऊपर रैंपर्ट पर फॉरबिडन सिटी में सैल्यूट ले रहे थे जब माओ ज़ेदुंग सारी परेड का, तो उनके साथ खड़े हो जाते थे, तो वो उनसे थोड़ा दूरी से बैठे हुए थे, तो माओ का स्टैचर बिल्कुल अलग से नजर आता था।
माओ के बारे में मशहूर था कि उनका दिन रात में शुरू होता था। वो लगभग पूरी रात काम किया करते थे और सुबह तड़के सोने के लिए जाते थे। उनका अधिकतर समय उनके बिस्तर पर व्यतीत होता था, यहां तक कि वो खाना भी बिस्तर पर ही खाते थे। 1956 में जब लोकसभा अध्यक्ष आइंगर के नेतृत्व में भारत का संसदीय प्रतिनिधिमंडल चीन पहुंचा, तो उसे एक रात 10:30 बजे बताया गया कि चेयरमैन माओ उनसे रात 12 बजे मुलाकात करेंगे। नटवर सिंह याद करते हैं,
आनंद साहब आइंगर के साथ जो हम गए थे, तो जब आर के नेहरू हमारे सफीर थे वहाँ, तो आर के नेहरू भी काफ़ी सिगरेट पीते थे, तो जब उन्होंने सिगरेट निकाली तो माओ ने उनको देसलाई से सिगरेट जला दी उनकी। जब ये लोग येनान में थे ना लॉन्ग मार्च के बाद, तो इनको दिन में तो लोग ये सोते थे और रात को लड़ाई करते थे और रात को काम करते थे, तो ये आदत पड़ी हुई थी। ये जब निक्सन भी गए तो उनको रात के 12 बजे बुलाया माओ से तुंगने, और निक्सन से दो दफ़े मिले, पर माओ से तुंगने इनका कॉल रिटर्न नहीं किया क्योंकि वो ही ट्रांसेंडेड ऑल।
जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष चीन आता था उससे माओ की मुलाकात पहले से तय नहीं की जाती थी। माओ का जब मन होता था वो उन्हें बुला भेजते थे, जैसे वो उन पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हों। पूर्व अमरीकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर अपनी आत्मकथा ईयर्स ऑफ रिन्यूअल में लिखते हैं,
मैं चीनी प्रधानमंत्री चुएन लाई से बात कर रहा होता था कि अचानक वो कहते थे कि चेयरमैन माओ आपका इंतजार कर रहे हैं। हमें सीधे माओ की स्टडी में ले जाया जाता था। उसकी तीन दीवारें किताबों से अटी पड़ी होती थीं, कुछ किताबें मेज पर तो कुछ जमीन पर रखी होती थीं। मेरी पहली दो मुलाकातों में तो वहां लकड़ी का एक पलंग भी पड़ा रहता था। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर बैठे हुए माओ उठकर मेरा स्वागत करते थे। वो मेरी तरफ इस गहरी निगाह से देखते थे मानो खबरदार कर रहे हों कि इस छल कपट के चैंपियन को मूर्ख बनाने की कोशिश करना फजूल होगा। 1972 में जब राष्ट्रपति निक्सन ने माओ से दुनिया की कुछ घटनाओं पर बातचीत करनी चाही तो माओ बोले, बातचीत? उसके लिए तो आपको हमारे प्रधानमंत्री के पास जाना होगा। मुझसे तो आप सिर्फ दार्शनिक मुद्दों पर ही बात कर सकते हैं।
माओ के डॉक्टर रह चुके जी शी ली ने माओ के निजी जीवन के बारे में बहुचर्चित किताब लिखी है, द प्राइवेट लाइफ ऑफ चेयरमैन माओ। उसमें वो लिखते हैं,
माओ ने अपने जीवन में अपने दांतों पर कभी ब्रश नहीं किया। जब वो रोज उठते थे तो वो अपने दांतों को साफ करने के लिए चाय का कुल्ला किया करते थे। एक समय ऐसा आ गया कि उनके दांत इस तरह से दिखाई देते थे जैसे उन पर हरा पेंट कर दिया गया हो। माओ को नहाने से भी बहुत नफरत थी। हाँ, वो तैरने के बहुत शौकीन थे और अपने आप को तरोताजा रखने के लिए गर्म तौलिए से स्पंज बाथ लिया करते थे। माओ वैसे तो जूते पहनते नहीं थे, अगर पहनते भी थे तो कपड़े के जूते। औपचारिक मौकों पर जब उन्हें चमड़े के जूते पहनने होते थे तो वो उन्हें पहले अपने सुरक्षा गार्ड को उसे पहनने के लिए देते थे ताकि वो ढीले हो जाएं।
1962 के भारत चीन युद्ध के मुख्य कर्ताधर्ताओं में माओ का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। उनकी नजर में इसका मुख्य उद्देश्य भारत को सबक सिखाना था, लेकिन इस पर बहुत कम चर्चा हुई है कि भारत पर हमला करने से पहले माओ ने इस बारे में रूस के नेता निकिता क्रुश्चेव और यहां तक कि अमरीका तक से सलाह मशवरा किया था।
कहने को तो चीन ने यह कहा कि इट वाज इंडियाज़ फॉरवर्ड पॉलिसी व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर द वॉर, वी वुड नॉट हैव गॉन इनटू द वॉर। लेकिन 1960 के अंदर ही माओ ने इंडिया के खिलाफ वॉर स्ट्रेटजी बनाना शुरू कर दिया था। यही ध्यान में रखते हुए कि भारत को अब एक शिक्षा देनी है, हिंदुस्तान का रुख ठीक करने के लिए उसको थोड़ी सज़ा देना ज़रूरी है। और माओ तो मतलब ही कुड नॉट टॉलरेट राइवलरी एट एनी टाइम, पर्सनल और अदरवाइज। ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ एज अ हेल्म्समैन ऑफ चाइना एंड ए ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड। 1960 में उन्होंने अमेरिका से ये तो नहीं कहा कि हिंदुस्तान से हमारे डिफरेंसेस हैं, उसे हमें सेटल करना है। ये पूछ लिया कि अगर इफ चाइना हैज़ टू गो टू वॉर फॉर सम रीज़न और दी अदर इंटरनेशनली, तो क्या विल अमेरिका होल्ड अस बैक इन ताइवान? तो उसको अमेरिकन्स ने कहा कि व्हाट यू डू इन चाइना एंड फॉर चाइना एल्सवेयर इज़ नॉट अवर कंसर्न, वी आर कमिटेड टू द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ ताइवान। Then the very next year, he took that matter up with Khrushchev. इनकी सारी पेट्रोल सप्लाई टिबेट वगैरह में उस वक्त वो थी जो कि सोवियत यूनियन से आती थी, और इनको डर ये था कि कहीं अगर हमारी लड़ाई हुई तो वो पेट्रोल सप्लाई बंद ना हो जाए। तो ये एक बहुत अहम डिवेलपमेंट है। तो उन्होंने Khrushchev से ये प्रॉमिस ले लिया कि हम ये नहीं करेंगे, और Khrushchev को बता दिया कि इंडिया से हमारे डिफरेंसेस बहुत हो। तो Khrushchev ने इनसे बार्गेन किया। इन्होंने कहा कि आपने दुनिया में तो हमारे खिलाफ मूवमेंट शुरू कर रखा है, लेकिन क्यूबा में जब हम मिसाइल्स भेजेंगे जो हम प्लान कर रहे हैं तो आप उसे सपोर्ट करेंगे, कहीं अमेरिका को सपोर्ट ना करने लगे।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि 62 की वॉर शुरू होने से पहले Khrushchev को पता था कि चीन इंडिया पर अटैक करेगा?
कर सकता है। और मिक सप्लाई के लिए उनसे हमारा एग्रीमेंट हो चुका था और मिक सप्लाई वॉज डिलेड व्हेन द वॉर स्टार्टेड बट द पेट्रोल सप्लाई टू द चाइनीज वॉज नॉट स्टॉप्ड. और जब क्रुश्चेव वॉज फेस्ड विद दिस क्वेश्चन एज टू व्हाई एंड हाउ यू कुड डू दैट देन द रिप्लाई वॉज वन इज ए फ्रेंड द अदर इज एन ally.
लेकिन इन्हीं माओ ने 1970 में मई दिवस के मौके पर बीजिंग स्थित सभी दूतावासों के प्रमुखों को तियानानमेन स्क्वायर की प्राचीर पर बुलवाया. आमंत्रित लोगों में भारत के शार्डी अफेयर्स ब्रजेश मिश्रा भी थे. बाद में उन्होंने लिखा,
राजदूतों की कतार में मैं सबसे आखिर में खड़ा था. मेरे पास पहुंचकर उन्होंने कहा, राष्ट्रपति गिरी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को मेरा अभिवादन पहुंचा दीजिए. वो थोड़ा रुके और फिर बोले, हम आखिर कब तक इस तरह लड़ते रहेंगे. इसके बाद उन्होंने अपनी प्रसिद्ध मुस्कान बिखेरी और मुझसे पूरे एक मिनट तक हाथ मिलाते रहे. ये चीन की तरफ से पहला संकेत था कि वो पुरानी बातें भूलने के लिए तैयार है.
1954 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पहली बार माओ से मिले थे. वो हिंदी चीनी भाई भाई का जमाना था, लेकिन इसके बावजूद नेहरू को वो मुलाकात रास नहीं आई थी. मशहूर पत्रकार इंदर मल्होत्रा ने बीबीसी से बात करते हुए कहा था,
1954 में जब प्राइम मिनिस्टर नेहरू गए और उनकी बातचीत हुई तो उस वक्त जवाहरलाल को परेशानी हुई. वो तो देख चुके कि वो इंपीरियल एटीट्यूड है. उन्होंने लिखा है कि लुक्ड एज बीइंग अशर्ड इनटू अ प्रेजेंस, तो दैट वाज द चाइनीज एटीट्यूड. लेकिन उसके साथ चीन में भी 58 में पेंगदेव वे वगैरह ने उनकी मुखालफत की, डेंग शियाओपिंग ने मुखालफत की, उसको निकाल दिया गया सेक्रेटरी जनरल के अहदे से. तो जब ये 100 फ्रॉस्ट ब्लूम एंड बिग लीग फॉरवर्ड हुआ है उस वक्त से, और फिर जब दलाई लामा यहाँ आए चीन तिब्बत में हुआ मामला, उस वक्त से कुछ इस देश में माओ के खिलाफ. लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, नक्सलाइट ने कहा चेयरमैन, चाइना चेयरमैन, जबर चेयरमैन. तो मुझको याद है कि जब 1976 में वो मरे तो हम लोगों ने, श्यामलाल साहब ने, गिरिलाल जैन, मैंने बैठ के, और मैंने लिखी थी इनकी ओबिचरी, और हमने ये कहना पड़ा कि भाई ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ हिज एज.
रिहान फजल, बीबीसी दिल्ली.